प्रस्तुति एक कदम रोशनी की ओर। कैंसर योद्धाओं से बातचीत की श्रृंखला।
अर्पा कम्युनिटी रेडियो प्रतिबद्ध है देश और समाज के विकास में सहयोग करने के लिए। इसी उद्देश्य को सामने रखकर हम बहुत से कैंसर योद्धाओं से बातचीत किए हैं अपने नियमित वार्ता एक कदम रोशनी की ओर में। तो चलिए, मैं संगीता अग्रवाल आज आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हुए मिलवाने ले चलती हूँ एक और योद्धा रीता राय ऋषिता जी से। रीता राय ऋषिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अर्पा रेडियो में। नमस्कार।
आप सबको मेरा नमस्कार है। अर्पा रेडियो की जितनी श्रोतागण है उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
ऋषिता जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं और आप अभी नागपुर मनेन्द्रगढ़ में वर्तमान में पदस्थ हैं व्याख्याता के पद से। आप अपने बारे में बताइए।
मैं 10 साल कोरबा में थी इसी पद पर। अभी अभी 2 महीने पहले मेरा मनेन्द्रगढ़ में हुआ है और ये मेरा ससुराल है। मैं रीता राय, पति ऋषि कुमार राय और मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं जो अभी MBBS की तैयारी में लगे हुए हैं, फॉरेन में रहते हैं।
अच्छा, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और आपने बहुत सारे क्लासेस लिए होंगे, है ना?
पर
जो कैंसर से जीत की कहानी और ये एक बोलो एक जिंदगी का सब्जेक्ट था आपके लिए आपकी भाषा में, तो ये पार्ट कैसा था? काफी अलग रहा होगा।
मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ एक शब्द की इग्नोरेंस। यह शब्द जो है,
हाँ
है ना, और कभी कभी आपके लिए कितना भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है या आपको तनी भी अंदाजा नहीं होता। मैं यहाँ पूर्ण जीवन की नहीं बल्कि जीवन में आने वाले उन बारीक इशारों की बात कर रही हूँ जो ईश्वर की तरफ से हमें सचेत करने के लिए दस्तक देती है, परंतु एक आम आदमी उसे आम समझकर कर देता है इग्नोर। मेरे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव का दौर आया, हर बार लगा चलो बच निकले जान छूटी, पर एक और दिन जब जान की कीमत भांति ईश्वर ने परीक्षा लेनी चाहिए, हाँ जीवन क्या है यह मैंने पहली बार जाना, और सबसे बड़ी बात उस इशारे को मैंने इग्नोर नहीं किया। तो आप सभी को मेरी एक एडवाइस है दोस्तों, आम दिन हर दिन की तरह, मगर उस दिन जब मुझे पता चला कि कैंसर है मुझे, मैं स्तब्ध रह गई। जब डॉक्टर ने मुझे खुद बताया, पूरा देश वैसे भी ठहरा हुआ था क्योंकि कोरोना का फर्स्ट फेज चल रहा था, बस वहीं से शुरू हुआ जीवन का एक नया मोड। और मैं अपना इलाज कराने अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर पहुंची। उस समय लॉकडाउन का समय था, उस समय कोरोना स्टार्ट ही हुआ था, तो कहीं पर भी आवागमन का कोई साधन नहीं था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। और मुझे बिलासपुर के बारे में पता चला और मैंने वहीं से अपना कैंसर का सारा ट्रीटमेंट लिया और मुझे थर्ड कैंसर डायग्नोस्ट हुआ था और मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है मुझे कैंसर सर्वाइव करेंगे।
तो आपने कहा कि इग्नोरेंस नहीं करना है, तो आप क्या आपके कारण क्या आपकी सजगता की वजह से आप जल्दी रिकवर हुई या क्या बात है?
जी हाँ, दोनों सजगता भी है और परिवार का पूरी तरह से सहयोग, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, इतना मेरा ज्यादा ख्याल रखा था। और मैं उस समय क्योंकि कोरबा में थी और कोरबा मेरा मायका है और लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो मम्मा के यहाँ रहकर ही मैंने अपना सारा इलाज करवाया था और मेरा भाई मुझे हर दिन मैं बिलासपुर जाती थी लेकर जाता था, तो सचेत तो रहना ही होगा। अगर मैं उस समय थोड़ा भी लेट करती तो वो थर्ड स्टेज पार कर जाती। और मुझे थर्ड स्टेज के लास्ट टाइम पे पता चला था कि मुझे कैंसर है और मेरा 3 ऑपरेशन हुआ। 3 ऑपरेशन फेस करने के बाद मैंने फिर कीमो और रेडिएशन का थेरेपी लिया और मैं शुक्रगुजार हूँ उन डॉक्टरों का जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी देने में मदद की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, डॉक्टर अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना होगा। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों को फेस तो करना ही है, तो क्यों ना हम हंसकर करें। और जी हाँ, तो जिंदा दिल ही तो जिंदगी का असली नाम है।
यहाँ आप तो जिंदा दिल ग्रुप से ही जुड़ी हुई है।
और वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कैंसर योद्धा है और अच्छे लोग हैं, उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और मैं भी ट्रीटमेंट के दौरान ही उन लोगों से जुड़ी हूँ जिसने जो आराधना दी है, वो उन्होंने मुझे जोड़ा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को देखकर लगता है कि देखो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी परिमुशीबतों से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो यार जो दुख है ना, वो बोलता है कि मैंने गणेश दरवाजे को खटखटा दिया। भी हार जाती है दुख देख कर, जैसे कि अनिता दुआ दी है उसमें 84 बार कैंसर फेस कर रही है, बताइए। तो ऐसे लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है।
और आज भी बड़ी शान से कहती हैं कि मुझे तो 4 बार हो गया कैंसर, हरा चुकी हूँ अनिता दुआ जी जो बोलती है
जी। हाँ, और मुझे पता है पहले लोगों का नजरिया ना इसके प्रति थोड़ा अलग था। जब मैं फेस कर रही तो मुझे लगता था कि हाँ देखो आज भी लोग इस युग में जीते हुए भी लोग ना मतलब कैंसर को अभी भी मतलब बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। जब आप जिस शब्द को सुनकर लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसको जब लोग खुद फेस करते हैं, जो व्यक्ति चीज को खुद फेस करता है तो सोचिए उसको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पर समाज को यही तो दिखाना है कि कैंसर से भी लड़ा जा सकता है। सही टाइम पर हम हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर की सारी बातों को अगर हम फॉलो करें तो हम कैंसर को हरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वही है। और आज जब आप सर्वाइव कर लेते हैं, जब कैंसर सर्वाइवर बन जाते हैं, तो लोगों को बताने में आपको एक अलग सा मतलब एक अलग सी खुशी मिलती है कि देखो मतलब मैंने हराया है इसको, मैंने फेस किया है और मैंने एक नया जीवन पाया है
जी। और ऐसा तो क्षण भी आया होगा कि आप बहुत उदास हुई होंगी या बहुत इस दर्द ने आपको तोड़ने की कोशिश की होगी।
जी हाँ जी, ऐसा मोड़ तो बहुत बार आया। जब मैं फर्स्ट ऑपरेशन के बाद जब फिर से पता चला कि एक और गांठ है, तो फिर से मैंने ऑपरेशन लिया, तब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो फिर से थर्ड ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा। तो सोचिए जब मैं 3 ऑपरेशन फेस कर रही थी, तब मेरे 2 बच्चे मेरे साथ रहते थे और मेरे मिस्टर यहाँ रहते थे ससुराल में, मैं दोनों बच्चों के साथ वहाँ रहती थी कोरबा में। तो मुझे इतना उस समय ऐसा कम लगता था कि ये ईश्वर मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, जब क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को भी उनके पैरों पे खड़ा करना था, उसी उद्देश्य को लेकर तो मैं इतने साल से वहाँ संघर्ष कर रही थी बच्चों के साथ। तो मुझे लगा बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, बस बच्चे टैट हो जाए और फिर मुझे भी बहुत कुछ करना था समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे टूटना नहीं चाहती थी, बस मैं टूटना नहीं चाहती थी। और मेरी माँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई महिला है, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाया था पहले ही दिन कि मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा ला बाद में, कभी भी पहले दिन के अलावा मैं कभी नहीं रोई। बस मैंने फर्स्ट दिन ही रोया था जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि प्रॉब्लम तो आ गई है, उसको फेस करना है तो हंस के करो और ये मत सोचो कि बुरा ही होगा, हो सकता है कि तुम अपने हिम्मत से उसको हरा कर आगे बढ़ जाओगी। और ऐसा ही हुआ जी। तो माँ का बहुत बड़ा भूमिका होता है बच्चे की जिंदगी में। माँ हर माँ तो एक बार बच्चे को जन्म देती है, पर लेकिन मेरी माँ ने मुझे दोबारा जन्म दिया है।
जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो खुद मुझे महसूस हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ईश्वर तो ईश्वर, ये लग रहा है कि ईश्वर यदि तकलीफ देता है तो उसको संभालने वाला भी देता है।
हाँ जी, बस सच में मेरे दोनों बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट किया था उस वक्त कि मेरे बच्चे मुझे लगते थे कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों ने मुझे कैसे संभाला, इतने अच्छे से संभाला और बताया कि मम्मा यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, आप आगे बढ़ सकती हो जाएगा सब सही। और ये सब बातें हैं ना जो वो अंदर में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसीबत के समय अगर आपके साथ अपने लोग हो ना तो आप बड़ी से बड़ी चैलेंज को भी स्वीकार करके उससे आगे निकल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है जी।
बहुत अच्छा है। तो ऋषिता जी, आपको बहुत सारे इनाम भी मिले हैं, कुछ प्राइजेस भी मिले हैं, तो आप उसके बारे में भी और अपनी रुचि के बारे में भी हमें बताइए।
बिल्कुल जी, जब मैं कैंसर के ट्रीटमेंट ले रही थी उस समय मैं लगभग ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था तो ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ऑनलाइन मैं 15 से भी अधिक संस्थाओं से जुड़ी, क्योंकि मैं बेड पे रहती थी उस समय, तो मुझे लगा कि चलो इस समय को यूटिलाइज करूँ और मेरा ध्यान भी इधर उधर मतलब बार बार बीमारी की तरफ ना जाकर कुछ अच्छे चीजों में लग जाए, तो मैंने उसी समय से लिखना स्टार्ट किया और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी। ऑनलाइन बहुत सारे अवार्ड मुझे उस समय भी मिले थे, और क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो हमारे क्षेत्र में तो आपको मतलब सर्वांगीण विकास स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुले रहते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया था बीमारी के दौर पे, और मैं स्काउट गाइड के क्षेत्र में भी रुचि रखती हूँ, तो उसपे मुझे उसी समय प्रधानमंत्री स्किल अवार्ड भी मिला था 35 लड़कियों के साथ, 35 छात्राओं के साथ। लेकिन कोरोना का दौर था तो ये मुझे, मैं जब ठीक हो गई तब मुझे हाथ में दिया गया। वैसे मुझे उस समय मैं सिलेक्ट हो चुकी थी जो कि राष्ट्रीय स्तर का था, और छत्तीसगढ़ से केवल मैं अपने टीम के साथ सिलेक्ट हुई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी और इस पे मैंने बहुत काम भी किया था।
अरे और बहुत अच्छा, हमारी तरफ से बहुत 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 बधाई आपको।
जी धन्यवाद आपका। और मैं, मेरी रुचि तो संगीत सुनना, बैडमिंटन खेलना, लेखन कार्य करना और सामाजिक क्षेत्र में, मतलब मैं हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। जरूरतमंद बच्चों को मदद करना, ये सब मेरी रुचियों में है जी। और घर का जो क्रॉप्स है वो सब काम तो मैं करती ही हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि घर को सजाने का सामान बनाऊँ या फिर कुछ ऐसे यूजलेस सामान हो उससे कुछ नया बनाया जाए, ये सब मैं करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है जी।
बहुत अच्छा। बल्कि अभी एक मेरे मन में एक सवाल आया, आप शिक्षा के क्षेत्र में, तो एक बहुत अलग सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे।
हाँ बिल्कुल।
क्लास में टीचर हमेशा जैसे स्टूडेंट की कॉपी, राइटिंग, होमवर्क ये सब चेक करती है, पर कभी ये चेक नहीं करता या करती कि उसके परिवार में कोई पेशेंट है या भाई बहन है, उसके मन में क्या चीज चल रहा है। तो इस वजह से वो बच्चा क्या ऐसा होता है कि वो दोहरी मार झेलता है, एक तो स्कूल में भी वो पिछड़ता है और उसके मन को कोई समझ नहीं पाता।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही बड़ा प्रश्न कर दिया जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये कोई छोटी बात नहीं है और हर कोई ये बात समझ नहीं पाता। मगर चूंकि मैं एक मम्मी माँ भी हूँ तो मैं जिस उम्र के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि जरूर उनका एक दोस्त होना चाहिए, करीबी दोस्त। कई बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी माँ मम्मी पापा से जो बात नहीं बोल पाते, या फिर कोई परेशानी रहती है उनको फिजिकली या मेंटली, तो उनको मैं जरूर सपोर्ट करती हूँ और मैं जानने की पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को अगर उसकी रुचि पहले अच्छी थी पढ़ाई में और बाद में वो पिछड़ रहा है तो उसका कारण भी जानने की कोशिश करती हूँ, और हमेशा मैं उनको उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करती हूँ ताकि वो हमारे अपनी सारी परेशानियों को आकर मुझसे कह सके, और इसका मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। वाकई में बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है और मैं कर पाती हूँ ये काम, तो ये मेरे लिए अच्छा है और मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहती हूँ।
जैसे कई बार टीचर या फिर कभी उन्हें ये बोलते क्यों पहले तो तुम इतना अच्छा करते थे अभी क्यों, तो उन्हें डांट करने बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को उनको रख के उनसे व्यवहार करना चाहिए।
बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं सारे शिक्षकों से ये कहना चाहती हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है ना, जानती हैं आप, आजकल हर बच्चे को सुविधा चाहिए सुविधा, और अगर आप किसी, मैं जैसे अभी जहाँ पर ट्रांसफर होकर आई हूँ ये इंटीरियर एरिया है और मैं कोरबा में शहरी क्षेत्र में थी, और ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे बहुत सारे होते हैं, जल्दी से किसी से ओपन नहीं होते हैं। अभी मुझे आज सिर्फ 3 महीने हुए लेकिन मैंने देखा कि गांव के बच्चे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनको ना वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बैकग्राउंड नहीं मिलता, घर में भी माहौल नहीं मिलता। तो मैं अब इसका इस क्षेत्र में भी काम करना चाहती हूँ और करूंगी आने वाले टाइम पे। अभी कम टाइम ही मिला था मुझे लेकिन मैंने कोशिश शुरू कर दी है ताकि बच्चों को मैं आगे कर सकूँ, जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको माहौल मिल सकूँ। और जी हाँ जी,
और भी कोई संदेश जो आप हर किसी को देना चाहते हैं, न सिर्फ कैंसर के लिए पर हर अपने स्वास्थ्यगत सजगता के लिए क्या करना चाहिए हर किसी को?
हाँ, अपने स्वास्थ्यगत सजगता के लिए तो हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अब बॉडी बताती है, शरीर का पार्ट आपको संदेश देता है, क्लिक करता है कहीं न कहीं कि कुछ तो गड़बड़ है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मैंने शुरू में ही इग्नोरेंस शब्द से शुरुआत किया था, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम महिलाएं क्या करती हैं, घर परिवार को संभालते संभालते अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर करती हैं। अगर हमको भूख लगी है तो हम इंतजार करेंगे कि पहले घर वाले सब, बच्चे, पति, सास ससुर हैं तो सास ससुर सबको पहले परोस लिया जाए फिर हम अपना ध्यान रखें। नहीं, गलत है। पहले मैं भी ऐसे ही थी, मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपने आप को बहुत इग्नोर किया था क्योंकि मैं वर्किंग भी थी और दो बच्चों का मुझ पर जिम्मेदारियाँ भी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहती थी और मैं बहुत अपने आप को इग्नोर करती थी। तो मुझे जिंदगी ने सिखा लिया एकदम अच्छे से, नहीं बिल्कुल नहीं, सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है और खासतौर पर एक महिला को तो बिल्कुल, क्योंकि वही तो घर और परिवार, दोनों परिवार बच्चे और सब पूरा अपने परिवार को लीड कर रखती है। अगर वो बीमार हो गई तो आप देखिएगा, दो दिन अगर हम बिस्तर पे चले गए तो घर परिवार बिखरने लगता है। इसलिए सबसे पहले आप अगर मजबूत होंगी तो आप अपने परिवार को सुदृढ़ और बहुत ही सुखी बनाने में अपना अहम भूमिका निभा पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है।
बहुत अच्छा, खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है और हर पल अपने आप को बेहतर बनाना और अच्छा महसूस करना जरूरी है।
बिल्कुल जी, और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर दौर बुरा हो तब तो आपको और अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी में लग जाना चाहिए ताकि आपको पता ही नहीं चले कि वो दौर कैसे गुजर गया।
बहुत सही, अपने सपनों के मालिक खुद बनिए।
मैं बोलना चाहती हूँ कि हर सितम ने सिखाया एक नया तजुर्बा, हर सितम ने सिखाया एक नया तजुर्बा, मैं कैसे कह दूँ कि दर्द सिर्फ तकलीफ देता है। बिल्कुल, और कुछ कुछ कर जाने की लो अगर तासीर में है, कुछ कर जाने की लो अगर तासीर में है, कि क्या फर्क पड़ता है कि क्या तकदीर में है।
अरे
हाँ, तो इस तरह से जिंदगी को मिस खुश होकर ही जीना है। जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन जब तक है तब तक कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग बोले वाह यार क्या है ये शख्सियत थी, ऐसा मैं सोचती हूँ।
आप बिल्कुल सही सोचती हैं और शायद हमारे कुछ न कुछ ऐसे वाइब्रेशन थे कि आप इतनी दूर से हमसे बात हो पा रही है और हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं। तो आप मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक चीज कहना चाहूंगी, एक बहुत प्यारी सी बच्ची आयशा चौधरी ने ये बात कही है कि यदि चढ़ना ही है पहाड़ पे तो सबसे ऊंची पहाड़ी को चुनो, और यदि चमकना है तो सबसे धुंधले दिन को चुनो जहाँ जिस दिन तुमको चमकना है। तो बिल्कुल यही संदेश हमें देना है और एक कदम रोशनी में आपके से बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अर्पा टीम की ओर से, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं।
जी जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ अर्पा टीम को मेरी तरफ से पास हृदय धन्यवाद, और चंद लाइनों के साथ हम खुशनुमा का लम्हा बनकर बीत जाएंगे, सोच ना लेना कि हम कोई आंसू बनकर बीत जाएंगे, बुरे वक्त और हालातों से सीख रहे हैं टकराना, हथेलियों पर उम्मीद को रखकर जीत जाएंगे, यही संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत आभार दी कि आपने मुझे यह मौका दिया।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कदम रोशनी की ओर।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।